ओम शांति। आप सभी मीठे बाबा के आज्ञाकारी सपूत बच्चे हैं। आप सबका लक्ष्य यही है कि मुझ आत्मा को बाप के श्रीमत पर चलकर बाप समान बनना है। बाप में दोनों बाप हैं, शिव बाप भी है, ब्रह्मा बाप भी है। शिव बाप समान कर्मातीत बनना है और ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है। तो शिव बाप समान कर्मातीत बनना क्यों जरूरी है? वैसे तो हम चाहें या ना चाहें घर तो जाएंगे ही, तो बाबा ले ही जाएगा, लेकिन कर्मातीत बनकर चलने में और कर्मातीत नहीं बने हैं उसके चलने में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे इस साकार दुनिया में आपने देखा होगा कि जब आपके पास या वैसे भी जब कोई बड़ा वीआईपी आता है तो उसके चारों तरफ गनमैन होते हैं, इसको बॉडीगार्ड कहते हैं, और उस गनमैन के बीच में वो वीआईपी बड़े शान से चलता है, लोग उसे सलाम करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब एक बड़ा कोई चोर या बदमाश पकड़ा जाता है तो वो भी बंदूक के ही बीच में चलता है, उसके भी चारों तरफ बंदूक वाले होते हैं और वो बेचारा सिर नीचे किए हुए सबकी नजरों में गिरा हुआ चलता है। अब देखो बंदूक के बीच में दोनों चल रहे हैं, वीआईपी भी और बदमाश भी, लेकिन दोनों के चलने में कितना अंतर है। ठीक इसी प्रकार अगर आप कर्मातीत बनकर चलेंगे तो बहुत खुशी से नशे से चलेंगे, धर्मराज भी आपको सलाम करेगा और विद आनर पास होकर लक्ष्मी नारायण के घराने में जाकर राज करेंगे। अगर आप कर्मातीत नहीं बने तो चलेंगे घर तो जरूर, लेकिन धर्म राज की सजा खानी पड़ेगी। सारे ब्राह्मण परिवार में शर्म के मारे सिर नीचे झुका हुआ होगा। सोचो उस समय कितनी ग्लानि अपने आप होगी। यही पश्चाताप, यही ग्लानि अंतमते सागते आत्मा शरीर छोड़ेगी तो उसकी क्या गति होगी, अर्थात किस पद को प्राप्त करेगा। समझ सकते हो कितना नीचा छोटा पद होगा। इसलिए आत्मा को शिव बाप के समान भी बनना है, अर्थात एकदम सब हिसाब किताब खत्म। जैसे बाबा प्योर है, ऐसे आत्मा को शिव बाप समान प्योर, सब हिसाब किताब मुक्त बनना है। उसके लिए शिव बाप कहता है, बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करते रहो, मुझे देखते रहो, एक मेरे को ही प्यार करो। तो जितना एक शिव बाबा की तरफ बुद्धि योग लगेगा उतना आपका हिसाब किताब खत्म भी होगा, आत्मा प्योर भी बनेगी। और जितना इस समय बुद्धि योग बाबा के साथ लगाएंगे तो यही अभ्यास अंतमते सागते शरीर छोड़ते समय बाबा की याद में शरीर छोड़ेगी तो बाबा के साथ साथ घर जाएगी। बराती बनकर नहीं, सजनी बनकर। अगर साथ नहीं चले तो बराती है। बराती को क्या मिलता है? खाना मिलता है, रहने के लिए दो टाइम मिलता, और बराती को क्या मिलता है? मिलता तो सब कुछ सजनी को है। इसलिए सजनी बनकर चलो, बराती नहीं। शिव के बारात में तो लूले लंगड़े काने बहरे सब हैं, भूत प्रेत सब हैं। अर्थात ऐसे मन की स्थिति वाले हैं, शरीर लूला लंगड़ा नहीं, लेकिन ऐसे मन की स्थिति वाले हैं, उनका पद भी वैसे ही होगा। और ब्रह्मा बाप समान सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन, सतयुगी डिग्री है। प्रेजेंट है, वर्तमान में है, फरिश्ता बन। फरिश्ता सो देवता है। इसका फरिश्ता बनने की विधि ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि फॉलो फादर, कदम पिछाड़ी कदम रखो। कैसे ब्रह्मा बाप ने शुरू से लेकर अंत तक क्या किया, कैसे किया, वो आप जानते भी हैं, मुरली द्वारा भी सुनते हैं। बहनों बड़ी बहनों दादियों के द्वारा भी सुनते हैं, उसी अनुसार स्वयं को चलाओ। जब अभी कदम पिछाड़ी कदम रखेंगे तब समान बन जाएंगे। कैसे ब्रह्मा बाबा योग करता था, कितने बजे उठता था, कोई विघ्न आता था तो क्या करता था, कैसे भोजन करता था, कैसे चलता था, कैसे तन मन धन शिव बाबा पर अर्पित किया। फॉलो फादर। एक एक चीज को फॉलो करो। जो चीज समझ में ना आए सेंटर पर निमित्त टीचर से पूछ लो कि इसमें हम क्या करें, तो जो टीचर राय देगी वो बिल्कुल फॉलो कर लो, वो फॉलो फादर कहा जाएगा। क्योंकि टीचर को बाप ने निमित्त बनाया है, भगवान जिम्मेदार है उनका। जहां तक फॉलो कर सकते हो करो, जहां देखो डिफिकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें, वहां आप टीचर से पूछ लो, राय ले लो और राय लेकर आगे बढ़ चलो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने से सबसे बड़ा फायदा आपको ब्रह्मा मां का आशीर्वाद मिलेगा। ब्रह्मा माँ भी है तो ब्रह्मा बाप भी है। शिव बाबा सिर्फ आत्माओं का बाप है, वैसे सर्व संबंध है, लेकिन प्रैक्टिकल में ब्राह्मणों का माँ शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आधार से हम आप पैदा हुए हैं, अर्थात ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने हैं। तो ब्रह्मा माँ हो गई और हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हैं, ब्रह्मा के द्वारा जन्म हुआ है, तो ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा बाप है, आत्माओं का बाप शिव बाप है, लेकिन ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा बाप है। तो ब्रह्मा बाप माँ भी है पिता भी है, इसलिए उसको फॉलो करने से उसकी आशीर्वाद मिलेगी। जिस आशीर्वाद के लिए गायन है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की, दुआ मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। ब्रह्मा बाप का आशीर्वाद खाली नहीं जाता है। दुनिया में भी कहते हैं कि ब्रह्मा उतर आए तो भी नहीं मानूंगा, माना ब्रह्मा जो कहता है वो सत्य है और किसी देवी देवता का या भगवान के लिए नहीं कहते हैं, कि भगवान ही उतर आए तो भी नहीं मानूंगा, ब्रह्मा ही उतर आए तो भी नहीं मानूंगा। ब्रह्मा के लिए कहते, तो शिव बाप को फॉलो करोगे तो शिव बाप की करंट मिलेगी, सकाश मिलेगा, बल मिलेगा। और ब्रह्मा बाप को फॉलो करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, और वो आशीर्वाद बहुत काम करता है, आगे क्लियर करेंगे। तो दोनों बाप को फॉलो करके हमें दोनों बाप समान बनना है। तो दोनों बाप समान बनने के लिए इन तीन बातों पर विजय चाहिए, माया पर विजय, प्रकृति पर विजय और पुराने संस्कारों पर विजय। जिसने तीनों पर विजय प्राप्त कर ली वही बाप दादा के समान बन सकता है। माया जीत, प्रकृति जीत, पुराने संस्कार जीत। सिर्फ माया जीत नहीं, सिर्फ माया से नहीं, लेकिन प्रकृति जीत भी है और पुराने संस्कार भी जीत। अब आप सोचते होंगे माया और संस्कार में अंतर क्या है। पुराना संस्कार मायावी संस्कार है, इसीलिए उसको पुराना कहते हैं। तो वो भी तो वही है, लेकिन माया और पुराने संस्कार में विशेष अंतर ये है कि माया आती है, संकल्प रूप में आती है और संस्कार बना हुआ है। संस्कार जबरदस्ती कराता है, माया आती है, बस हो गए तो करते हैं, नहीं तो माया पर विजय प्राप्त कर लेते। लेकिन संस्कार जो है वो हमसे करा लेता है, हम नहीं चाहते लेकिन करा लेता है। अगर कोई कुछ कहे तो कहते क्या करूं भाई साहब, मेरे संस्कार ही यही है, मैं बहुत चाहता हूं लेकिन ये संस्कार ही ऐसे हैं। तो संस्कार कराता है, माया आती भिन्न भिन्न रूप से। तो माया जीत बनने का साधन है। आप देखो जब आप सतयुग में थे तब आप माया जीत थे, प्रकृति जीत थे, पुराने संस्कार जीत थे। वहां भी आपको ये शरीर था, परिवार था, समाज था, जैसे अब है तैसे तब था, वो सतो प्रधान था है, तमो प्रधान है, लेकिन था। लेकिन उस समय आत्मा को शरीर होते हुए भी माया के अधीन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय शरीर होते भी एक प्रकार से शरीर का मालिक थी, इसके अधीन नहीं थी, मालिक थी। तो मालिक होने के कारण हम माया के अधीन नहीं आए, विकारों के अधीन नहीं आए। विकार तो वहां होते ही नहीं है, क्योंकि इस समय विजय प्राप्त कर लेते हो। लेकिन विकार आने का आधार भी ये शरीर ही है। जब आप सतयुग में हो तो विकार नहीं है। क्या हम सतयुग में आत्म अभिमानी हैं? देह अभिमानी तो नहीं है, लेकिन क्या आत्म अभिमानी हैं या नहीं है? जो कहते हैं वो हाथ उठाओ। तो जो कहते सतयुग में देवताएं आत्म अभिमानी है। अच्छा, सतयुग में देवताएं आत्म अभिमानी नहीं है। देह अभिमानी भी नहीं है, लेकिन देह भान है। देह भान है, देह अभिमानी नहीं है, लेकिन देह भान है। जैसे जो राजा होगा उसको तो ये भान होगा ना, मैं राजा हूं, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा बच्चा है, ये प्रजा है, ये भान तो होगा या नहीं होगा? तो ये देह भान नहीं है तो और क्या है? देह भान है लेकिन देह अभिमान नहीं। यहां हमको दोनों है, देह भान भी है और देह अभिमान भी है। अभिमान अर्थात पांच विकारों के बस। कईयों को संकल्प चल रहा होगा कि बाबा मुरली में तो कहता है कि देवताएं आत्म अभिमानी होते और यहां हम कह रहे हैं नहीं, देवभान होता है, आत्म अभिमानी नहीं होते। बाबा की मुरली अगर आप ध्यान से सुनते होंगे तो बाबा ने आत्म अभिमानी किस रूप से कहा है? बाबा ने मुरली में कहा है कि जब शरीर छोड़ने का समय आता है तब आत्मा को ख्याल आता है कि ये बुढ़ा शरीर छोड़कर जा करके अभी हम बच्चा बनूंगा, खुशी खुशी से इसको छोड़ देते। तो अंत के समय ये ख्याल आता है, बाकी सारा जीवन मौज में खुशी में बीतता है, क्योंकि ना माया है, ना विकार है, ना किसी प्रकार का दुख है, मौज ही मौज है। तो माया जीत बनने के लिए हमें इस देह भान से मुक्त होना होगा, क्योंकि जब हम द्वापर में आए हैं, आत्मा द्वापर में शरीर धारण किया, तब तक आत्मा शरीर में रहते रहते ये भूल गई कि मैं आत्मा हूं, इसका भान पक्का हो गया। जैसे देखो, इसका एक मिसाल बाबा ने दिया कि जब आप ये कहते हो कि सतयुग में आत्मा 16 कला संपूर्ण है, वहां आपका कर्म अकर्म है। अकर्म का अर्थ है ना पाप कर्म करते हो ना पुण्य कर्म करते हो। पुण्य कर्म है दूसरे को सुख देना, प्रभु का पैगाम देना, वो वहां जरूरत ही नहीं, कोई दुखी ही नहीं है, किसको सुख देंगे, किसको प्रभु का पैगाम देंगे, प्रभु को जानते ही नहीं। और ना दुख देने के 5 विकार ही हैं जो हम किसी को दुख दे, तो ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं। तो जब सतयुग में आत्मा 16 कला है तो त्रेता में 14 कला क्यों हो गई? जब न कि हमने पाप किया ना पुण्य किया। कहते पाप करने से कलाएं कम होती है, पुण्य करने से चढ़ती कला है। तो ना वहां हमने पाप किया ना वहां हमने पुण्य किया, तो फिर हमारी कला क्यों कम हो गई? 16 से हम 14 क्यों हो गए? इसका कारण है कला माना विशेषता। जब आत्मा परम धाम में है तो जब तक परम धाम में है उसको शरीर नहीं मिला है, तब तक आत्मा जैसे है वैसे ही रहती है, घटती बढ़ती नहीं, जितनी है उतनी रहती है। लेकिन जैसे आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो आत्मा को शरीर के संग का रंग थोड़ा थोड़ा लगने लगता है। इसलिए आप मुरली में ये शब्द सुनते होंगे कि लक्ष्मी नारायण से श्री कृष्ण की महिमा ज्यादा है। क्यों? लक्ष्मी नारायण शादीशुदा है। अब वहां शादीशुदा होते हुए भी तो पवित्र हैं, शुद्ध हैं, लेकिन फिर भी कला क्यों कम हुई? क्योंकि श्री कृष्ण के शरीर में आए हुए आत्मा को बहुत थोड़ा समय हुआ है और लक्ष्मी नारायण के शरीर में रहते हुए ज्यादा समय हो गया। शरीर तो वही है ना, सिर्फ नाम बदली हुआ है, तो उसमें रहते हुए ज्यादा समय हो गई। तो जितना ज्यादा समय आत्मा शरीर में रहती है तो शरीर का रंग उसके ऊपर चढ़ता है, अर्थात आत्मा चैतन्य है और ये शरीर प्रकृति का जड़ है। जड़ का प्रभाव चैतन्य पर पड़ने लगता है, वो अपनी चैतन्यता को, अपनी ओरिजिनल स्टेज को धीरे धीरे भूलना शुरू कर देती है इसका प्रभाव पड़ने से। जैसे देखो सूर्य की रोशनी है, अब जैसे जैसे कोई चीज ऊपर उठाते जाओ रोशनी ऑटोमेटिक कम होती जाती, छाया पड़ती जाती, रोशनी कम होती जाती, दूरी कम होती जाती है। इसलिए आत्मा में इसका रंग लगने से उसकी डिग्री कम हो जाती। तब अभी बाप कहता है कि बच्चे देह तथा देह के सब संबंध भूल, अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो जाएंगे। देह भान में रहकर याद करोगे तो खैर याद ही नहीं पहुंचेगी, पाप भी भस्म नहीं होगा। देह भान में तो रहकर भक्तों ने बहुत याद किया, वो भगत हम ही आप हैं, कोई पाप भस्म नहीं हुए, बढ़ते ही गए, क्योंकि देह भान था, विकार बढ़ते गए, बुराई बढ़ती गई। तो इस पर विजय पाने का, अर्थात माया पर विजय पाने का साधन क्या मिला? आत्मक स्थिति, फरिश्ता स्थिति। एक मुरली में बाबा ने कहा था, व्यक्त मुरली में, अच्छा चलो किसी को आप आत्मा नहीं देख पाते हो, शरीर ही देखते हो, प्रैक्टिस शरीर देखने की पड़ी हुई है, तो क्या करो, उसके शरीर को लाइट का शरीर देखो, भल शरीर देखो लेकिन लाइट का शरीर देखो। उसके लाइट के शरीर के बीच में लाइट स्वरूप आत्मा विराजमान है, फरिश्ता, ये देखो। इससे आप माया जीत सहज बन जाएंगे। दूसरा है प्रकृति जीत, प्रकृति जीत का मतलब क्या होता है? क्या प्रकृति से कोई लड़ाई करेंगे? प्रकृति जीत का अर्थ क्या है? प्रकृति जीत का अर्थ है कि कोई भी प्रकृति के तत्व हमें अपनी तरफ आकर्षित न करे, ना दुख के रूप में ना सुख के रूप में। सुख के रूप में भी आकर्षित न करे, दुख के रूप में भी आकर्षित न करे। तो जब प्रकृति किसी भी रूप में आकर्षित न करे, उसको कहा जाता है प्रकृति जीत। तो प्रकृति जीत बनने की दो विधि है। एक, इस प्रकृति से स्वयं को डिटैच करो, इस प्रकृति अर्थात शरीर से स्वयं को डिटैच करो। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा इस शरीर से न्यारी, चाहे सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ, चाहे मूल वतन में शिव बाबा के साथ, वहां से जो आप बाप से कनेक्ट होकर आप जो संकल्प करोगे, वो वाइब्रेशंस प्रकृति को पावन बनाएगी। तो प्रकृति जीत बनने का पहला साधन है प्रकृति को पावन बनाओ, प्रकृति को शुद्ध बनाओ। आप जितना प्रकृति को पावन बनाएंगे, प्रकृति को शुद्ध बनाएंगे, उतना आप सतयुग में पावन प्रकृति पर राज्य करेंगे। आदि में 100% सतो प्रधान प्रकृति है। जैसे धीरे धीरे आत्मा की कला कम होती है, वैसे प्रकृति भी धीरे धीरे सतो प्रधान की स्टेज से नीचे आती जाती है। तो सतो प्रधान प्रकृति का सुख लेना है, जैसे बाबा कई मुरली में कहता है, नए मकान का सुख और कुछ दिन के बाद पुराना हो जाए उस मकान के सुख में अंतर होता है। बाबा कहता है त्रेता युग में जो सतयुग का माल खाया होगा सतो प्रधान, वो बचा हुआ त्रेता युग वालों को मिलता है, उनसे जो बचा वो। इसलिए सतो प्रधान सुख लेने के लिए इस समय प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा करो। सतयुग में प्रकृति जीत बन जाओगे, प्रकृति सुख देगी। लेकिन संगम युग पर लास्ट में मुरली में सुनते हैं कि विनाश में सबसे अहम रोल किसका है? प्राकृतिक आपदाएं ही है, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि जो कुछ भी है। लेकिन अगर आप प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा कर रहे हैं तो प्रकृति विनाश के समय आपको सहयोग देगी, दुख नहीं देगी। जो प्रकृति को तमो प्रधान बना रहे हैं, निगेटिव अपवित्र संकल्प चलाकर बोल के द्वारा कर्म के द्वारा, वो तो प्रकृति के द्वारा बहुत दुख पाएंगे, बहुत दुख पाएंगे। लेकिन जो बाबा के बच्चे प्रकृति की सेवा कर रहे हैं उनको प्रकृति दुख नहीं देगी, सुख देगी। जैसे एक एग्जाम्पल, कुछ समय पहले गुजरात में भूकंप आया था तो उसका मुख्य केंद्र था भुज, कच्छ भुज वहां था। तो जब भूकंप आया तो सब कुछ तहस नहस हो गया था वहां, होटल भी, स्कूल भी, हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं बचा था। एक बाबा का अपना 3 मंजिल मकान था, वो क्रैक भी नहीं हुआ, वो सेफ खड़ा रह गया, जबकि सब खत्म हो गया। ये तो रहा प्रकृति ने सहयोग दिया, लेकिन प्रकृति ने क्या आपकी मदद की? वो सागर का किनारा है, वहां खारा पानी आता है, पीने का मीठा पानी नहीं आता है। तो जब भूकंप आया वहां जो बोरिंग थी, जिस बोरिंग से पानी लेते थे, बोरिंग से खारा पानी आता था क्योंकि सागर का किनारा है। तो जब भूकंप आया तो भूकंप तो काफी धरती के नीचे से होता है, तो धरती हिली जो, तो पानी का लेयर बदल गया और उसी दिन से वहां मीठा पानी आने लगा। अभी भी मीठा पानी आ रहा है। तो देखो प्रकृति ने कितने को तो मौत के घाट सुला दिया, कितना घर द्वार दुकान सब विनाश हो गया, और बाबा के बच्चों को मीठे पानी का तोहफा दे गई। तो प्रकृति की अभी से सेवा करो तो अंत में प्रकृति आपको सहयोग देगी। तो एक विधि ये है। दूसरी विधि है प्रकृति जीत बनने के लिए। प्रकृति माना 5 तत्व, पांचों तत्वों की जो विशेषता है उस विशेषता को धारण करो तो उस तत्व के आप विजयी बन जाएंगे। जैसे धरती है, धरती की क्या विशेषता है, क्या विशेषता है? पांडव, अच्छा शक्तियां, क्या विशेषता है धरती की? धरती की सबसे बड़ी विशेषता है कि धरती दाता है, देती है। जितने खनिज पदार्थ, अनाज, पानी, तेल सब धरती से ही निकलता है, धरती दाता है। और दूसरा सहनशील है, सहनशील है। धरती पर चाहे आप मंदिर बनाओ, चाहे आप मुर्दा जलाओ, धरती कुछ बोलती नहीं, चाहे गड्ढा खोदो चाहे ऊंचा आप उसको पाट के बड़ा करो, कुछ बोलेगी नहीं, सहनशील है। तो दो विशेषताएं, दाता है, दूसरा सहनशील है। अब ये दोनों विशेषताएं आप धारण करो, जैसे बाबा दाता है, सब बच्चों को ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, प्रेम का, शांति का दान देता ही रहता है, ऐसे हम आप बच्चे भी सदा देते रहें। पैसा देने की बात नहीं है, कोई भी आपके सामने आता है जाता है देखते हो, ये भी भगवान का बच्चा है। अज्ञानी है तो संकल्प करो, किसी को भी देखो, बाबा ये आत्मा भी आपको पहचान ले, बाबा इसका भी भला हो जाए, इसका भी बुद्धि योग बाबा आपसे जुड़ जाए। आपने ये संकल्प उसके लिए किया, आपका तो न जाने कितना जमा हो गया भाग्य में, और उस आत्मा तक आपका ये संकल्प पहुंचेगा। उसका फायदा दो होगा, एक फायदा अगर उस आत्मा से आपका कोई हिसाब किताब है तो वो वहां खत्म हो रहा है, पहली बात, और दूसरी बात आपका ये सेवा एक प्रकार से मनसा सेवा है, ये सेवा अगर वो बीके बनने वाला होगा, पार्ट होगा, और किसी कारण बस वो ज्ञान नहीं सुन रहा है तो उस कारण का निवारण हो जाएगा, वो ज्ञान सुनने आ जाएगा। दो फायदा है, अपना भी फायदा है उसका भी फायदा है। अगर ब्राह्मण आत्मा सामने आती है तो यही संकल्प, बाबा ये आत्मा भी आपसे पूरा वर्षा ले ले, बाबा ये आत्मा भी आपका राइट हैंड बन के रहे, बाबा ये आत्मा भी सदा कल्याणकारी बन के रहे, ऐसे ब्राह्मणों के प्रति शुभ भाव न रखो, देखो लेकिन इस भाव से देखो, दाता बन देते जाओ। ये गुण धारण करने से जो धरती के द्वारा विनाश के समय तकलीफ आने वाली थी, चाहे बाढ़ चाहे भूकंप आदि, उसमें आप सेफ रहोगे। जो चीज धरती के द्वारा प्राप्त होती है अंत तक आपको मिलती रहेगी, धरती देती रहेगी। दूसरी बात है पानी, जल। जल की क्या विशेषता है? ठंडा। अच्छा, जल की विशेषता है, जल में एडजस्ट होने की पावर बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाने की विशेषता बहुत ज्यादा है। आप पानी को चाहे एक छोटे चम्मच में रखो तो भी रुक जाएगा, मटके में डालो तो भी एडजस्ट हो जाएगा, सागर में डालो तो भी एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने की पावर, उसके साथ मिल जाने की पावर, ये पानी में बहुत ज्यादा है। पानी ऐसा है कि पानी में कोई भी रंग मिला सकते हो, सबके साथ मिक्स हो जाएगा। अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा के साथ एडजस्ट होकर रहना लौकिक परिवार के साथ श्रीमत प्रमाण स्वयं को एडजस्ट रखना, ये जल की विशेषता है। आप इस गुण को धारण करो। एक, जल एडजस्ट होता है, दूसरा बहता रहता है। बहता अर्थात सदा सबको ज्ञान देते रहो, चलते रहो, ज्ञान देते रहो, पावन बनाते रहो। तीसरी विशेषता है, टाइम हो रहा है, तीसरा है आकाश। आकाश की क्या विशेषता है? दो विशेषता उसकी भी है। एक तो आकाश ऊंचा है, दूसरा पोलार है, खाली। ऊंचा है और पोलार है, खाली। तो आप सदा ऊंची स्थिति में रहो, बाप समान की स्थिति में रहो और मन को एकदम खाली रखो, बस मैं आत्मा और मेरा बाबा। बाबा बाबा का ज्ञान या बाबा ने श्रीमत जो दी है उस प्रमाण लौकिक में कार्य व्यवहार में रहना, मन को खाली रखो। इसके बाद है आग, थोड़ा जल्दी पूरा कर रहे हैं। आग, आग की क्या विशेषता है? तो सहज है, क्या विशेषता है? आग जलाती है, अर्थात आग की विशेषता है कि आग परिवर्तन कर देती है, नाम रूप सब कुछ बदल जाता है। कोई भी चीज जला दो तो जो पहले जैसा था वैसा रहेगा, टोटल बदल जाएगा। ये शरीर जला दो तो क्या रहेगा? इतनी राख रहेगी। ये सब कुछ रहेगा क्या? नहीं, परिवर्तन हो जाता है। तो आग की विशेषता है परिवर्तन करना। तो स्वयं को भी श्रीमत प्रमाण परिवर्तन करो। क्या? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। फिर जितने सोमान बाबा ने दिए हैं, मैं आत्मा, कौन सी आत्मा हूं, उस सोमान में स्वयं को रखो। और लास्ट है हवा। हवा की विशेषता है हल्की होती है और निरंतर चलती रहती है। वायु को प्राणदाता कहा गया, प्राणदान कहा गया। एक मिनट भी हवा बंद हो जाए तो आत्मा चली जाएगी। तो वायु की विशेषता है निरंतर चलती है और दूसरा हल्की होती है, एकदम हल्की होती है। कहता ना, ये तो वायु के समान उड़ता रहता है, हल्का है। तो इतने पुराने संस्कारों से हल्के रहो कि बस उड़ते रहो, मैं आत्मा मेरा बाबा, मैं आत्मा मेरा बाबा। ऐसे आप बाबा के साथ उड़ते रहो, मिलन मनाते रहो, विश्व की सेवा करते रहो। अच्छा, ओम शांति।